ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय बजट में रेलवे संबंधित प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
आम बजट की घोषणा हो गई, साथ ही रेल के लिए बजट का बेहतर प्रावधान भी कर दिया गया आम बजट में। इस रेल बजट की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस बार क्या सब खास होने वाला है, आइए अब हम जानते हैं रेल बजट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या प्रतिक्रिया दी है।
नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट है 86,458 करोड़ का। अमृत स्टेशन 98, इसमें इन्वेस्टमेंट है 3,164 करोड़ का, यानी कुल मिलाके करीब करीब 90,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। अमृत, न्यू ट्रैक्स, डबलिंग, ट्रिपलिंग सब मिलाके 90,000 करोड़ रुपए का रेलवे का इन्वेस्टमेंट।
आज इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं भारतीय रेलवे के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार। अरुणेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि इस बार रेल के लिए जो प्रावधान किया गया है बजट में, वह विगत वर्ष की तुलना में इस बार किन चीजों में अलग है और क्या सब खास इस बजट की विशेषताएं हैं रेलवे के लिए।
देखिए, बजट जब पेश किया जाता है तो जनता की नजर दो चीज पे होती है कि पिछली बार का खर्चा और जो घोषणाएं हुई थी उसका क्या हुआ और आगे क्या होने वाली है। सबसे पहले खुशी की बात यह है कि भारतीय रेल ने जो घोषणा की थी कि कितना हम पैसा कमाएंगे, कितना खर्चा करेंगे, वो उन्होंने पूरी तरह से अनुमानित दर के हिसाब से प्राप्त किया है। कहना चाहिए कि अगर उन्होंने कहा था कि हम 1635 मिलियन टन करेंगे तो उतना उन्होंने कर दिया है, और अगले साल 1700 मिलियन टन माल भाड़े की उपार्जन करने की बात हो रही है। और जहां तक रेवेन्यू की बात है तो रेवेन्यू में भी उन्होंने कहा था कि हम 2,89,000 करोड़ रुपए इकट्ठे करेंगे, जो उन्होंने पूरे इकट्ठे कर लिए हैं, करीब 600 करोड़ रुपए अनुमानित दर से ज्यादा। तो ये तो बजट पुराने वर्ष की बात रही, और अगले वर्ष में आने के लिए बड़ी महत्वाकांक्षी धन उपार्जन की योजना है, क्योंकि यात्री भाड़े से पहले 80,000 करोड़ रुपए का अनुमान था, जो उसके पिछले साल 75,500 था, अब बढ़ के 92,800 करोड़, यानी 80,000 पे 12,800 करोड़ रुपए पैसेंजर में जो उछाल दिख रहा है दो वर्षों से, वो आगे आने की इस वर्ष में उम्मीद है। साथ ही साथ माल भाड़े में 1,80,000 करोड़ का जो पिछले वर्ष का अनुमान था, जो प्राप्त भी हो रहा है, इस बार 1,88,000, क्योंकि रेलवे जो है माल भाड़े से ही अपना फायदा कमाती है और यात्री भाड़े में थोड़ा नुकसान होता है, तो ये भी इसमें बढ़त हो रही है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 2,78,600 करोड़ रुपए की जगह हम रेलवे उपार्जन कर रहेगी 3,01,400 करोड़, यानी 3,00,000 करोड़ सालाना रेलवे का इस साल पहली बार 3,00,000 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार हो रहा है। तो ये तो हुई हमारे बजट के कितना खर्चा और कितना आएगा।
जी जी।
और हमारा खर्चा भी करीब करीब उतना ही पहुंच रहा है, क्योंकि खर्चा भी वो बजट को जितना हम आता उसी हिसाब से बनाया जाता है। ये तो हमारे बजट की बात हुई, अब बात उठती है कि जनता को किस रूप में मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी चीज जो है इस साल जो रोल आउट होगी कि भारत वर्ष में पूरा विद्युतीकरण हो जाएगा, जितना जरूरत थी उतनी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जिससे ग्रीन रेलवे मानी जाएगी भारतीय, कोई जीरो कार्बन एमिशन के हिसाब से। दूसरी चीज जो दिखेगी, जो कि वंदे भारत ट्रेन्स ने भारत में काफी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से आगे बढ़ते हुए गए हैं, तो इस बार शयनयान सेवा भी शुरू होने का पूरा तैयारी हो चुकी है, इसकी ट्रायल्स वगैरह भी हो रही है और रिसर्च 55 गाड़ियों का प्लानिंग की गई है जो कि रोल आउट की जाएंगी। ये दो महत्वपूर्ण चीज है, साथ साथ सेफ्टी की बात भी है। सेफ्टी मतलब कवच के बारे में हर कोई कहता है कि यात्री में कोलिजन्स के बारे में कुछ ध्यान दिया जाए, तो आप ये जो घोषणा है कि भारत में भारतीय रेल दिल्ली बम्बई और दिल्ली कलकत्ता दो मार्गों पर पूरी तरह से कवच प्रणाली लागू करने का प्लान है, जो कि उम्मीद है कि पूरा भी हो जाएगा और काफी इस पे फंड्स की एलोकेशन भी किया गया है। ये मोटी मोटी चीजें हैं, बाकी और भी चीजें हैं, जैसे स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात हो रही है, मतलब आप जो स्टेशन में जाए तो लगे कोई अच्छी चीज बनी है, तो 1300 स्टेशनों में 4 सालों में धीरे धीरे खर्चा करके बढ़ाया जाएगा। इस साल 12,000 करोड़ रुपया कस्टमर एमिनिटीज पे खर्च होने का प्रावधान है, 12,000 करोड़ रुपया, ये बहुत बड़ी चीज है। जहां तक डब्बे बनाने की बात है, आखिर में जनता ये चाहेगी कि साहब नॉन एसी और जनरल और स्लीपर कोच में यात्री ज्यादातर सफर करते हैं, इसके बारे में क्या रेलवे की योजना है। तो रेलवे अगले दो वर्षों में 17,500 नॉन एसी जनरल और स्लीपर डब्बे बनाएगी। ये बहुत बड़ी फिगर है, क्योंकि एक साल में हम करीब 9,000 डब्बे बनाते हैं। तो ये जो डब्बे अब बनाए जाएंगे ये लो इनकम ग्रुप के लिए होंगे, और उनको वेटिंग लिस्ट कम हो और उनको जगह मिले, इसके लिए एक बहुत बड़ी चीज है, ये आने वाले हैं। साथ साथ पुराने डिजाइन के जो ICF के डब्बे हुआ करते थे, जिसमें एक्सीडेंट के समय चोट ज्यादा लगती थी और जिनकी गति थोड़ी कम है, इनको भी धीरे धीरे करके अगले 5 वर्षों में पूरी तरह से हटाने का प्रावधान कर दिया गया है, जिससे कि सेफ्टी अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि LHB कोच ने मूल रूप में ही वो अच्छे होते हैं। और आजकल कुंभ मेला की बातें बहुत जोरों शोरों से हैं, तो भारतीय रेल ने रिकॉर्ड बनाया था अभी 364 ट्रेन चलाने का एक दिन में, और इस कुंभ के लिए उन्होंने 45 दिन में 3100 नई ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। इसका मतलब ये कि रोजाना करीब 80 ट्रेनें, यानी हर घंटे में करीब 3 ट्रेनें चली हैं, और 10,000 ट्रेन तो वैसे ही चल रही हैं। तो इसलिए ये सब चीजें बहुत बड़ी चीज है ये यात्री के सुविधा के लिए, क्योंकि भारतीय रेल काफी बड़ी संस्था है और कुछ भी चलाने के लिए काफी वृहत संख्या में चीज है, तभी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस बारे में सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत जबरदस्त कार्यक्रम जो चलाया हुआ था उसको पूरी गति देते हुए इस बजट को पेश किया है।
यहाँ कवच की आपने चर्चा की, कवच योजना को ही हम समझना चाहेंगे कि कवच योजना किस प्रकार में कह लें कि लागू हो रही है, इसके क्या परिणाम निकले हैं, और आगे जिस कॉरिडोर के लिए आपने कहा है वहाँ कब तक ये लागू हो जाएगा?
कवच के देखिए था ऐसा है कि अगर दो ट्रेनें आमने सामने आ रही हैं तो प्रावधान यह है कि वो रुक जाए, जैसे ऑटोमेटिकली रुक जाए, ड्राइवर कुछ भी ना करे और इतनी दूर रुके जैसे दोनों में भिड़ंत ना हो। तो ये तभी हो सकता है जब पटरी के सहारे कुछ ऐसे उपकरण लगाए जाए जो इसको कैच करें कि कोई ट्रेन आ रही है, और दूसरे ट्रेन से बातचीत करे उसके कंप्यूटर से कि देखिए सामने एक और ट्रेन है और आपको रुकना जरूरी है। तो ये पटरी के सहारे आपको सारे उपकरण लगाने होंगे, और जो इंजन चल रहा है, चाहे इंजन हो आगे, हो सकता है पीछे मालगाड़ी का गार्ड वाला डब्बा हो, दोनों में ये प्रावधान करना पड़ेगा कि आपको सिग्नल आ रहा है, इसको आप गाड़ी को रोकना जरूरी है, और ये ऑटोमेटिकली लग जाए। अब ऐसा हो सकता है कि उस रास्ते पे वो इंजन हो ना हो, आपने पटरी के दोनों तरफ तो उपकरण लगा दिए लेकिन जो इंजन आ रहा है उसमें वो उपकरण ना हो, तो ये समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए भारतीय रेल ने कहा है कि इंजन तो हम सारे पे लगा देते हैं, इंजन मतलब 10,000 इंजनों पे ये काम चालू हो चुका है चितरंजन में, और ये 3,000 किलोमीटर की जो ट्रैक है नई दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से कलकत्ता, आने वाली और जाने वाली दोनों ट्रैक पे ये पूरा उपकरण लगा दिया जाए, जिससे कि ये कवच प्रणाली पूरी तरह से प्रयोग में लाई जा सके।
आकाशवाणी के बिहार संवाददाता की एक रिपोर्ट।
केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के रेलवे क्षेत्र को बड़ा आवंटन इस बार किया गया है। 10,066 करोड़ से अधिक की धनराशि का आवंटन केंद्र सरकार ने किया है। इससे राज्य में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का तेजी से विकास होगा। 10 वर्ष पहले रेलवे के लिए किए गए आवंटन से यह धनराशि 9 गुना अधिक है। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रशाल सिंह ने बताया कि इस धनराशि से बिहार में रेलवे के दोहरीकरण, विद्युतीकरण और रेलवे स्टेशनों के विकास में मदद मिलेगी। राज्य में अमृत भारत स्टेशन सहित कई नई परियोजनाओं पर काम हो रहा है। केंद्र सरकार की मदद से बिहार के रेल को ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित किया जा रहा है।
प्रस्तुत है झारखंड संवाददाता की रिपोर्ट।
केंद्रीय बजट में आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रेल मंत्रालय द्वारा झारखंड को 7,302 करोड़ रुपए का अंश आवंटन प्राप्त हुआ है। वर्ष 2009-14 के दौरान प्राप्त 457 करोड़ रुपए के वार्षिक औसत बजट की तुलना में 2014 से लेकर 2025 की अवधि में प्राप्त नया बजट आवंटन उससे लगभग 16 गुना अधिक है। 2014 के बाद से झारखंड में लगभग 1,311 किलोमीटर नई पटरियों का निर्माण किया गया है, जबकि रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है। 56,694 करोड़ रुपए की लागत से झारखंड में फिलहाल 34 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसके साथ ही 1,147 करोड़ रुपए की लागत से रांची, हटिया और टाटा नगर जमशेदपुर स्टेशन के पुनर्विकास का काम भी हो रहा है। झारखंड राज्य के 57 स्टेशन को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही साथ 14 जिलों से गुजरते हुए लगभग 22 अनूठे स्टेशन पर 12 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। शिल्पी, आकाशवाणी रांची।
आकाशवाणी के उत्तर प्रदेश संवाददाता की एक रिपोर्ट।
वर्ष 2025-26 के बजट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में यात्री सुविधाओं को बढ़ाने, रेलवे के कायाकल्प और ट्रैक के विस्तार के लिए 19,858 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअली मीडिया को संबोधित करते हुए कहा,
हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा एलोकेशन है, 19,858 करोड़ रुपए का, और इससे उत्तर प्रदेश के पूरे रेलवे नेटवर्क का जो कायाकल्प हो रहा है, जो मोमेंटम है, जिस तरह से काम तेजी से हो रहा है, लगातार उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कृत संकल्प है, कटिबद्ध है। पूरे उत्तर प्रदेश में रेलवे में इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो है 1,04,000 करोड़ रूपए।
केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि कम दूरी के लिए नमो भारत और लंबी दूरी के लिए वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जाएगा, जिससे लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
यहाँ पर यात्रियों की सुविधा को लेकर हम समझना चाहेंगे। इस बार यात्रियों की सुविधा के लिए और हर आय वर्ग के लिए, एक तो आपने जानकारी दी कि जो कह लें कि नॉन एसी गाड़ियां हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है, साथ ही सिर्फ स्लीपर वाली गाड़ियां जो है वो बढ़ाई जा रही है, यानी उनका परिचालन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रीमियम एंड की गाड़ियां हैं उनमें आम यात्रियों की सुविधा के लिए इस बजट में क्या सब खास दिया गया है?
जैसे मैंने आपको बताया कि वंदे भारत ट्रेन का डिजाइन है वो अभी तक चेयर कार के लिए था और बहुत पॉपुलर साबित हुआ है। नई दिल्ली बनारस, नई दिल्ली प्रयागराज में तो लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट है। पहले 18 डब्बों की गाड़ी को बढ़ा के 24 डब्बों की गाड़ी बनाया गया है, और ये स्लीपर कोचेस की सफलता को देखते हुए अब शयनयान चालू किए गए हैं। वंदे भारत में एक सबसे बड़ी चीज ये है कि बाकी सहूलियत अंदर से अच्छा लगता है, नई तरह की डिजाइन है। इस गाड़ी की क्षमता, स्पीड पकड़ने की और ब्रेकिंग क्षमता दोनों अधिक है। माने 56 सेकंड में ये 180 किलोमीटर 160 किलोमीटर पकड़ सकते हैं। जैसे बंबई में सबर्बन चलती है, एक के पीछे एक गाड़ी चलती जाती है, तो ये स्पीड जल्दी पकड़ती है और हल्की रोक भी सकती है, जिससे कि समय कम लगता है। समय कम लगना ये बहुत आवश्यकता है, क्योंकि दो स्टेशनों के बीच में गाड़ी अगर कम समय में पहुंचे तो यात्री के लिए अच्छा ही है। जब ट्रेनें बढ़ती हैं तो वेटिंग लिस्ट कम होती है। यात्रियों को दो चीज चाहिए होती है कि एक तो समय पर ट्रेन चले, और हमको वेटिंग लिस्ट अगर होती है तो जिस दिन हमारी ट्रेन चले उस दिन तक वो कन्फर्म हो जाए। इसीलिए नई गाड़ियां चलाई जाती हैं, स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं, और इसकी कैपेसिटी 24 डब्बों की होने के साथ साथ इसमें पैसेंजर स्लीपर की उम्मीद है कि वायु बर्थ का डिजाइन जब रोल आउट किया जाएगा तो पता चल जाएगा, बट ये ट्रेनें जल्दी पहुंचाएंगी आपको, तो उस हिसाब से ये अच्छा रहेगा यात्रियों के लिए। साथ साथ खाना एक विषय रहा है जिसमें शिकायत काफी मिलती है, और हर तरह के यात्री भारतीय रेल ले जाती है, तो वो चीज को भी ध्यान में रखते हुए कैटरिंग की सुविधा के लिए भी IRCTC ने काफी प्रयास किए हैं। करीब 16 लाख खाने रोजाना बनाते हैं, और इतनी बृहद संख्या में हो सकता है कुछ कमी रह जाए।
यहाँ हम ये समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि फॉग यानी धुंध जब हुआ करती है तो उसमें समस्या गाड़ियों को होती हैं, क्या इससे निकलने का, इसके समाधान का कोई उपाय हमारे पास है, या उस दिशा में हम कदम उठा रहे हैं, तकनीकी रूप से हम सक्षम उस दिशा में हो सके, इसके लिए कोई प्रयास हो रहा है?
देखिये, यहाँ तक धुंध में चलने का सवाल है तो अभी तो अगर आप समझे यात्री हवाई जहाज में भी ये समस्या आती है, सबसे ज्यादा एडवांस है। तो अगर बिल्कुल मूल रूप से समझा जाए कि ऐसा अभी कोई हमने टेक्नोलॉजी लगाई नहीं है जो कि धुंध में गाड़ी चला सके, चाहे कार हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे हवाई जहाज हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम नहीं कर सकते। अभी जैसे हाई स्पीड चल रही है बंबई से अहमदाबाद वाले साइड में, तो उसमें सिग्नलिंग को धुंध के ऊपर नहीं रखा गया है, उसको सिग्नल को क्या करा गया है कि जहाँ ड्राइवर बैठता है उसके सामने अंदर कैबिन में लेके आ गए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैबिन सिग्नलिंग, कैब सिग्नलिंग। मतलब आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं है, आपको अंदर ही देखना है, और सारे सिग्नल जो है कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल होते हैं। कार से जाते हैं तो हम रेड लाइट देखते हैं, भाई रुक जाइए, फिर ग्रीन है चल दीजिए। आप ड्राइवर को आगे नहीं देखने की जरूरत है, उसको अपने इसमें ही देखने की जरूरत है। अंदर इतना ज्यादा कोहरा है कि आप अगर आदमी सड़क पे आ जाए तब तो नहीं चेक कर पाएगा, या कोई जानवर आ जाए तब तो नहीं देख पाएगा, तो थोड़ा बहुत देखना तो चाहिए जरूर उसको भी। लेकिन कैब सिग्नलिंग एक रास्ता है, और कैब सिग्नलिंग तब इस्तेमाल की जाती है जब ये पूरा सिस्टम ही सिग्नलिंग का बदल जाए। ये तो हुई हमारी चाहने की बात, लेकिन अभी जो नई चीज बनाई जा रही है कवच, इसमें भी सिग्नल रिपीटर सिस्टम बनाया गया है कि आपको पता चल जाए कि आगे का सिग्नल कैसा है, ग्रीन है, येलो है या रेड है। तो इस पे काम हो रहा है, लेकिन आपको अभी सामने या हमको इतनी जल्दी दिख के नहीं आएगा, क्योंकि पूरा भारतीय 70,000 किलोमीटर का जो रूट है सब पे होता हुआ दिखे। और जहां तक कोहरा अगर आप समझे लिमिटेड रूप में ये दिल्ली के आसपास या उत्तर भारत में ज्यादा होता है तो वहां पहले लगाया जाए, इस पे अभी प्रयास मतलब उस नजर से जारी नहीं हुआ, बिकॉज उसके लिए पूरा सिग्नलिंग सिस्टम को उखाड़ के दूसरा लगाना पड़ेगा। तो अवेलेबल है सिस्टम, इसलिए हाई स्पीड वाले रूट पे लगाया गया है, इस पे अभी नहीं पहुंचे हैं।
श्रोताओं को आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी, बजट की विशेषताएं आपने जानकारी दी, आने वाले दिनों में आम जनता का सफर बेहतर होने वाला है ये हम समझ पाए हैं। श्रोताओं की ओर से अरुणन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय बजट में रेलवे संबंधी प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।